हरत्वे हत्वा एतिव आया नहीं किसी पास के कहते हैं भूमापुर जिसमें कृष्ण नंदगांव से नंदघाट पर थे उसमें द्वारका में थे ब्राह्मण के पुत्र को लाने के लिए जब थे तो उस समय भूमा पुरुष ने उनको अपने पास में लेकर के रख दिया। कृष्ण बलदेव जी वहां पर गए उनका दर्शन करके भूमा पुरुष कह रहे हैं आज मैं सत्यम अपने आपसे हमने इसीलिए कुछ अपराध किया आपके चरणों में क्योंकि आपको दर्शन करने इसलिए यहां पर भूमा पुरुष श्री कृष्ण के रूप को दर्शन करने के लिए उनको हरण करके ले गए और कृष्ण वहां पर जाने पर उनके रूप को दर्शन करके बहुत उपहार दे करके और उनके चरण कमल और इस तरह से रहे कश्यानुभाव अश्व तमाम हृदयों स्पर्शा अधिकार के लिए और अब कह रहे हैं लक्ष्मी के नाग पत्नियां कृष्ण की वंदना कर रही कहो ये कितना भाग्यशाली है कि कृष्ण के चरणों का ये काली महान दुर्बिनी और महान नीच और जिसने तपस्या की भावो कौन सा तपस्या या किस सौभाग्य से आज कृष्ण के चरणों को अपने सिर पर धारण कर रहा है कोई हम तो देखते नहीं कि किसी सौभाग्य के लिए शुक्र की इत्यादि नहीं किया हो कृष्ण का विरोधी था नहीं क्या कहा था कि कृष्ण के चरण यहां पर हमारे यहां लग गए किंतु कृष्ण ने योग करके उसके सिर पर और कैसे रखा ब्रह्माचार्य के वंदनीय और समाधि में दर्शन नहीं होने वाले श्री चरण कमलों को वो भी नृत्य करते थे नृत्य करते और भी कहता गोपियों को अपने सामने देकर के अत्यंत अद्भुत होकर के बड़े आनंद के साथ चरणों को स्पर्श कर जो ब्रह्म और शंकर के लिए भी संभव पर समाधि में भी नहीं है और उसको स्वयं नृत्य करते हुए बड़े प्रसन्न होकर के वो नहीं रखना चाहता जो करते जिसके लिए श्री लल्ला लक्ष्मी जी जो नारायण की विहाय कामना सारी कामनाओं को छोड़कर लक्ष्मी जी की कामना क्या हो सकती है जिसको वो छोड़ती है एक पति प्रधान नारी की कामना क्या हो सकती है विशेष करके नारायण की चरणों की सेवा बिहार उसको भी छोड़ दिया भूल गई और छोड़ दिया और छोड़ करके क्या की कामान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने की जरा श्री जाने में वहां पर तो बोलते चरण कमलों की नहीं सेवा कर किंतु सुचिरम वितव्रता व्रत धारण करके बहु काल पर्यंत व्रत ही धारण किया पाई की नहीं ये विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी कहते हैं और मैं सनातन ये नहीं पाया तपस्या कर रहे हैं या क्या कर किया तपस्या किया किंतु क्या उनका फल हुआ है ये नहीं इसमें एक बात इसमें दोनों चीजें आती हैं लक्ष्मी जी ने अपने पति नारायण की सेवा पूर्ण कर और देर भर में यही सुना जाता है और यहां पर प्रथम था लक्ष्मी लक्ष्मीकांत नारायण ये जानते थे कि नहीं ये लोग जा रहे हैं हमको छोड़कर, जाने की नहीं, वो तो सब हम सब जरूर जानते होंगे। ये हमारी प्रिया जी और कृष्ण के रूप को दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए वृंदावन के वहां पर तपस्या। तो नारायण ने क्या किया, उन्होंने मुस्कुरा दिया। क्यों मुस्कुरा दिया? इसलिए कि इसका पतिव्रत भंग होने जा रहा है, इसलिए जीत ही, मैं भी उनका रूप देकर के मुक्त हो जाता हूं और अपने रूप में वहां पर कृष्ण के हृदय में रहता हूं। जब कृष्ण आते हैं तो सब अवतार के साथ उनके अंग में रहते, तो मैं भी उनके रूप को देकर के चकित और मुक्त हो जाता हूं। तो लक्ष्मी को भी तो कोई आपत्ति की बात, क्यों? क्योंकि कृष्ण ही, मैं ही कृष्ण, कृष्ण को मुक्त तत्व था, कृष्ण में नारायण तत्व भी है, इससे लक्ष्मी जी का परम तत्व जो है कृष्ण में लगन आ जाए, उसके लिए लोकवाना सेवा के लिए पतिव्रता किंतु श्रीमती राधिका जी के लिए नारायण के प्रति, राम के प्रति ये नहीं। लक्ष्मी जी का उनमें हो जाए कोई बात नहीं, किंतु नहीं होगा और होता भी नहीं है संभव नहीं, इसलिए दोनों के लिए दिख रहा है। नारायण का भी अनुमोदन है, उन्होंने मुस्कुरा करके जान करके भी कोई बाधा नहीं, यदि नारायण बाधा देते तो आ सकती थी, इसलिए से मालूम होता है कि उनकी भी अनुमति थी। जब कोई जानते हैं कि कृष्ण का ये माधुरी, पीला माधुरी, फूल माधुरी और वेण माधुरी जो सुने का जो आकृष्ट हो जाए, इसलिए यहाँ पर और क्या कहते हैं, अपन भाव पूज्य करें, इनको तो पता है अपने आप भी उसमें मुक्त हो जाते हैं और उसके विपरीत माधव से अपरकलित पूर्वक पश्चमात्कारकारी प्रतिमम गरियान एक मातुज्य अयम हंत श्रेष्ठ च लुब्ध चेता सरसम उपभोक्तम कामेरा। कृष्ण कवि स्तंभ में अथवा कहीं दर्पण में अपना रूप देकर राधिका के समान ही इसको उपभोग करने की लालसा, किंतु नहीं कर सके, रूप को देकर के आकृष्ट हो गए, मुक्त हुए, किंतु राधिका के समान नहीं कर सके। इसलिए राधिके को मालूम हो रहा है, राधिका का जब तक भाव महाभाव नहीं आएगा तब तक कृष्ण भी अपने रूप के माधुर्य को दर्शन करके उतने लुप्त नहीं होंगे जितने की गोपियां होती हैं। इसलिए कृष्ण का माधुर्य विशेष करके चारों माधुर्य अद्भुत है, जो नारायण इत्यादि किसी में नहीं है। एक तो संख्य के प्रयोग कृष्ण, यही तथ्य है कृष्ण का मैंने स्वरूप अब एवे संक्षेपे कोई राधा। अब तक तो हमने कृष्ण का अब तक स्वरूप बताया, अब मैं राधा जी का स्वरूप कौन बताएगा?
Personification of all mellow, and he is Sarvashaktiman, all potent, so much beautiful, so much attractive, that he attracts each and every entity. All conscious and unconscious entities get attracted towards him. All ladies get attracted towards him, up to Lakshmi herself. And so as though Krishna gets attracted towards his own beauty himself. There is in shloka, it has been quoted here, the word has been used that Lakshmi Kanta gets attracted. Here, this word has been derived, it has been broken into two ways, Lakshmi Kanta.
Lakshmi Kanta, we can say Lakshmi Kanta, but here it has been wrote on Lakshmi Kanta.
Here, the word means Lakshmi Kanta. The interesting point is being raised here. Lakshmi Kanta means Narayan, not Lakshmi. So, even Narayan gets attracted, and is his own incarnation, but he gets attracted towards Krishna. And then there is an example from Srimad Bhagavatam that once a Brahman was having his sons, but they were dying. In fact, Homa Brush was taking them away.
Who was Homa
Brush? Homa Brush means Karan Rukshay Vishnu. Karan Rukshay Vishnu. He was taking away those sons of Brahman. Why? Because he wanted to have darshan of Krishna himself. Then finally, in nutshell, Krishna with Arjuna went to Homa Brush to bring those sons of Brahman back. And when Homa Brush saw Krishna, he was delighted. And in the mood of highly delighted state, he said, this is my desire, I wanted to see you. Therefore, I did this offense at your lotus feet to bring this son, bring the sons of Brahman. But what have I done? I was so much desired and attracted to see you. This means that Homa Purush, Vishnu, Narayan, all incarnation of Krishna himself get attracted to see Krishna. Krishna has got his four times Madhurya, which is quite different from his other dimension. Here, again, attraction of Lakshmi is being discussed. Lakshmi gets attracted. Quotation from Srimad Bhagavatam, there is a shloka, Nag Kanya, the Nag Patni, wife of Kaliya Nag, they are praying to Krishna. When Krishna defeated Kaliya Nag and was dancing on the hoods of Kaliya Nag, at that time, wives of Kaliya Nag were praying, oh Prabhu, oh Krishna, we don't see a slightest fortune of this Kaliya Nag. He is envious and jealous against you, and he is very person of anger. He has no any good qualities, and we don't see any reason why it happened so that you are putting your foot on his hood, on his head. Not only that you are just putting your foot on his head, but you are also dancing on his head. In what way you are dancing? Maharaj is explaining. Krishna is seeing all gopis and gopis in front of him there on the land, and he is in a mood of rejoice and to please them and to show his own victorious position. With lot of pleasure and lot of enjoyment, he is dancing very playfully on the hood of Kaliya Nag. So how much fortunate this Kaliya Nag has become, without reason we don't know. Because you are so much difficult to get, then they are saying, of yours are not even obtainable in his meditation by Brahma and sages like him. But today, this Kalyanagi is getting so much high fortune. Even Lakshmi is always trying to enter into your Ras Lila. For this, she is performing austerity. Now Maharaj has raised a very important question. When Lakshmi has gone to perform austerity, does Narayan know that she is going? How come Narayan does not know anything? Narayan knows everything. So when Lakshmi is going to perform austerity to have association of Krishna, Narayan never thinks that she is doing right, wrong. He is smiling. Why does he smile? Because he knows there is no offense what Lakshmi is going to do. Even I get attracted towards Krishna. Krishna has got this four madhurya additional to all of us. He is so beautiful that if Lakshmi goes there is no harm. He is my origin. So her going to my origin does not make her faulty and unchaste. But Maharaj is raising her question that if this thing will not be done by Radharani and Gopi, they will never think or do anything for Narayan. It will not be vice versa. Because Narayan is incarnation of Krishna, Krishna is original himself. Therefore, any lady, maybe wife of Narayan, Lakshmi, if she is performing any austerity for Krishna, does not fall on unchastity platform. And one thing more Maharaj is mentioning, whether Lakshmi got opportunity or not, Śrīla Viśvanātha Chakravartī says, no, she could not get opportunity to enter in the Ras of Krishna. But she performed austerity. Whether still she is performing or not is not clear. And it is said that at Vailvan she did her austerity.
One thing more. Why Lakshmi could not have the chance to serve Krishna? Because she was not doing anything that authority, Aradhana, in the guidance of Gopi. That was the prominent cause. If she has done in the way and in the guidance of Gopi, I think Krishna would have allowed our Yogamaya head. But she never did. She had a very proud ego that I am chaste lady, I am Brahmani, I cannot go to Gopi. No, Krishna, she will go, but not in the guidance of Gopi. So that Gopi may be told. Gopi can tell, Yogamaya may tell her that you should come in the form of any Gopi and then you should be married to any Gopi and then you should be in the association of and guidance of Gopi, then you can have it. But Lakshmi will not
accept
that. That is why we never and we will never. Another thing in this, a very good thing, that Krishna is causeless person. Kali never wanted this, that Krishna should keep his lotus feet and down from it. But he still forcibly did. Why? Because he is causeless. Ye ahaputi kripata ek ye lakshan vishe. कृष्ण आहत इसलिए उन्होंने कहा क्या कारण है कोई कारण नहीं किंतु तो ये कारण ये कहा जा सकता है कि नाग पत्नियां कृष्ण के पत्नी और उनको इस कांत भाव से शायद या जिस रूप में हो कृष्ण की शरणागत होकर को पुकारा इसलिए पहले तो कहते थे कि ये दुर्जन मारा जाए तो अच्छा पढ़ा नीच है ये कृष्ण को काट रहा है, किंतु जब वो शिथिल हो गया और कुछ नहीं कर सका, कृष्ण उसके सब खड़ों को अपने पैरों से दाब कर उसे पीस दिया, रक्त उगलने लगा, तो सोचा जैसे ये तो गरुड़ से जो मैं नहीं हारा और ये कौन हो सकता है, साधारण बालक तो नहीं हो सकता है। तो वो भगवान ऐसे ही भगवान के शरण और कहा जैसे ये हमारी पत्नी हमको पहले से कह रही थी कि ये कृष्ण साधारण बालक है, मैंने इनकी बात नहीं सुना, एक प्रभु हमारी गया। उन्होंने कहा जब हम विधवा नहीं होना चाहती है और इसमें कुछ भक्ति आ गई, इसलिए उन लोगों ने प्रार्थना की और ऐसा स्वभाव एक कारण ये ऐसे के
already told that one reason that why Krishna put his foot on the foot of Kaliyanag is his boundless mercy. His mercy has no bond, no name. Therefore, to an entity like Kaliya, who had no quality, who had no bhakti, still he got mercy. But another reason which can be given is that his wife were devotee of Krishna. They were Krishna Anuragi. They already were attached to Krishna in whatever mood, but they were. When Krishna went to Kaliyanar and Kaliyanar tried to kill Krishna, he did his level best by to kill Krishna at that time. Wives of Kaliya were very much upset. They said, it's better if our husband dies because he is against Krishna. They were praying for his death because these wives were attached to Krishna more than her. Their husband. Therefore, because of this fact that he was husband of such a devotee wife, Krishna probably showed his mercy. When Krishna defeated Kaliyanag and Kaliyanag lost all energy, he was totally controlled by Krishna. Then Kaliyanag remembered, oh, this boy is not an ordinary person. He is really Lord. My wife used to remind me that he is Lord, but I never accepted it. Today I found. I could not be defeated by Garuda and he has defeated me. And knowing this thing, he surrendered himself to Krishna. When he surrendered himself to Krishna, then those wives of Nara, they said, oh Krishna, now a devotee feeling of towards you has instilled in my husband. Now my husband is becoming your devotee, so we want that he should be alive and we should not become widow. And then on the request of those wives of Krishna, Kaliyanag, Krishna gave him life and put his foot on his foot.
अब राधा जी का स्वरूप अब सामने लगेगा। उसके बाद त्रिविक्रम महाराज जी राधा जी की महिमा सुनने में रण भंग देकर पीठ पीछे दिखला करके भाग गए। राधा जी की महिमा कृष्ण महिमा तब तक थे। बहुत सावधानी के साथ में सुनना, बहुत गंभीर सिद्धांत और इसमें विचार है। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিনি কৃষ্ণ কি অনন্ত শক্তি আসল মে পরাশ শক্তি কৃষ্ণ পরতত্ত্ব এক হ্যাঁ আর উনকি পরাশক্তি ভি এক হি হ্যায়। और है वो श्रीमती राधिका, इस चीज को समझ। किंतु अपने अलग अलग क्रियाओं के द्वारा उनके नाम अलग अलग रखते हैं। जब जैसे कार्य को करती है उसका नाम वैसे, इस तरह से उनकी एक पराशक्ति के अनंत प्रकार, अनंत प्रकार। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यही प्रकार में इसको उसमें शक्ति में प्रधान जिस शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति अंतरंगा बहिरंगा तथा अंतरंगा भी जीव शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति, जीव शक्ति तथा इसको ऐसे भी कहा। अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार, अंतरंगा स्वरूप शक्ति जो है वो सबसे इसी को विष्णु शक्ति पराप्रवक्ता ये सदस्य जानते हैं। ये सच्चिदानंदमय कृष्ण, कृष्ण का जो स्वरूप है सच्चिदानंदमय है सब चीज। यहाँ पर मायावादी कहते हैं कि सत मैंने वही जो चित्त मैंने वही और आनंद मैंने वही, इसलिए वो निर्विशेष परंपरा है। जीव मिथ्या है जगत असत, किंतु सत और चीज और आनंद एक वस्तु नहीं है, इनमें परस्पर वैशिष्ट है। अतएव स्वरूप शक्ति है ना, इसलिए स्वरूप शक्ति भी तीन रूप में हो जाती है, क्योंकि सत है चित है आनंद है, इसलिए इनकी पराशक्ति जो स्वरूप शक्ति है वो भी तीन प्रकार की हो गई। आनंद अंत से लागे, अनंत के अंत से लागे, सत अंत से अचित अंत से संवेद, जारे ज्ञान कवि आनंद अंत से कृष्ण शक्ति आनंद, आनंद अंत से लागे। जो शक्ति जो पराशक्ति अपने जीव रूप में कृष्ण को आनंदित करती है और जगत को भी आनंदित करती है वो लागनी। इसी लागनी शक्ति का सार प्रेम है और इस प्रेम का सार है महाभाव, और महाभाव स्वरूप राधिका जी अपने स्वरूप से वो कृष्ण को आनंदित करती हैं लागनी, और कृष्ण की इच्छा से वो अपने अंतिम स्वरूप से जीवों के अधिकार में जो है उसके द्वारा जीवों के आनंद होता, और अपनी छाया के द्वारा जगत में जो आनंद माने सुख है
जड़ानंद
वो क्या करती है जड़ानंद जिसको करते हैं जीवों के अंदर में ब्रह्मानंद वो प्रदान करते हैं। चीत अंत से संबित, चीत अंत से संबित संबित मैंने क्या ज्ञान, ज्ञान मैंने क्या ज्ञान, जब में जितने ज्ञान है वो जड़ ज्ञान, विज्ञान की वो भी जड़ ज्ञान, जीवों के हृदय में जो ज्ञान है वो आंशिक ज्ञान प्रकृत ज्ञान, और चित जगत में जो आनंद है जो ज्ञान है वो चित ज्ञान, चित ज्ञान मैंने तत्व ज्ञान है, और यही आगे बदल करके भाव के रूप में पड़े। ये मेरे पति हैं, साथ साथ में एक भाव ज्ञान का है कि पति, किंतु पति के साथ में एक भाव कृष्ण हमारे प्यारे हैं, कृष्ण हमारे सखा हैं, ये ज्ञान तो है किंतु सखा जो सखा की जो भाव है सख्त भाव वात्सल्य भाव मधुर भाव पार्थिव उन्नत उज्ज्वल भाव यही किसी के रूप में जीवना। तब लागनी के साथ में मिलकर के यही शुद्ध शत्रु इसलिए लागनी संघनी संपित कई को सर्वसंशय लाभता परिमिशा पैनो गुणवत्ता कृष्ण के आह्लादिता के नाम कृष्ण को आनंदित कर विलास के द्वारा चित्त के कृष्ण के चित्त को भी विलापित करती हैं, इसलिए नाम लागिनी। शेष शक्ति द्वारा तू आस्वाद्यापन, उस लागे शक्ति के द्वारा आस्वादे सुपनी कृष्ण भी आनंदित सुख ये अनुभव सुख का आस्वादन। यदि हल्लादने का भाव नहीं होता तो कृष्ण भी विभिन्न प्रकारों के आश्रय विषय होकर के वे रस का आस्वादन नहीं कर पाते, इसलिए ये कृष्ण भी इस हल्लादने शक्ति के द्वारा रस का आस्वादन करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। सुख स्वरूप कृष्ण पर भक्त करे सुख दीते हल्लादनी। कृष्ण सुख रूप कृष्ण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और आनंद का आस्वादन करते हैं, रसों का आस्वादन करते हैं, और भक्त बनो को ये लागनी शक्ति ही कारण है। लागनी का था और श्रद्धा से आरंभ कर श्रद्धा निष्ठा की आरंभ भाव है, ये सब लागनी के भाव है। जितना ही अभाव उसके अंदर में ये प्रकाशित होगा उतना ही कृष्ण के इस स्वरूप का माधुरी का आस्वादन कर सकते हैं। बिना लादने की सहायता से और उसमें यदि संगीत का भाव मिल जाए तो सोने में सुहागा। ये दोनों मिल सकते हैं जिनको कृष्ण का स्वरूप के माधुरी का आस्वादन कराते हैं। लादनी सार अंत भाव प्रेमना आनंद चिन्मय रूप और प्रेम परम सार महाभाव जानी से महाभाव पार लादनी सार अंत जो कृष्ण रसस्वादन करते हैं दूसरों को रसस्वादन कराते हैं उसका सार प्रेम आरंभ कहां से हुआ? युद्ध में कहां से आरंभ हुआ? कृष्ण सेवा की वासना से किया। इसको दूसरों रूप में कह सकते हैं श्रद्धा। श्रद्धा माने क्या? कृष्ण श्रद्धा शब्द विश्वास है, कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा सब कुछ काम करता है कृष्ण की सेवा से। तो जीव ये कृष्ण सेवा की वासना हृदय में उत्पन्न होती है तो उसका बाहरी चिंतन बाहरी लक्षण होता है ये श्रद्धा। क्या? गुरु के वाक्यों में
विश्वास,
शास्त्र के वाक्यों में और वेद के वाक्यों में। तब उसकी श्रद्धा ऐसी होती है प्राण चला जाएगा ऐसी वासना होती है किंतु दुर्बलता की वजह से कर नहीं सकता, निष्ठा में ऐसा कर देता जैसे इसलिए नाम यहाँ से आरंभ करते श्रद्धा से और स्नेह मान प्रणय राग अनुराग मादर तक चला गया। जो राधा जी का अपना स्वरूप है वो उसका ये स्वरूप श्रीमती राधिका प्रेम परम सार महाभाव ज्ञानी श्री महाभाव स्वरूप राधा राधा जी का स्वरूप ही महाभाव जब पूर्ण रूप में विकसित हो जाता है उसी का स्वरूप बुद्धिमान विग्रह श्रीमती राधिका प्रेम स्वरूप देह प्रेम कृष्ण प्रेम स्वरूप प्रेम का स्वरूप और राधा जी का देह प्रेम का स्वरूप। उनका गठन ही ऐसे हुआ, उनका चित्त का गठन कैसे हुआ, वो स्नान कैसे करती, तीन त्रिकाल संध्या प्रथम अवस्था दूसरा मध्यम अवस्था और तीसरा
किशोर
किशोर कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। यहाँ पर भी
वर्णन किया
तो करें जनाधिका जी कहते इंद्रिय मन सब कुछ कृष्ण के महाभाव यहां तक कि उनका स्नान श्रृंगार क्या है उनका जो श्रृंगार कर किया राजा की भाव भाव
क्या
है हाव भाव अशेष हाव भाव जीव जीव राधिका जी का हाव भाव कटाक्ष ये सब क्या चीज है उनके भाव इत्यादि ये आभास ये इनके श्रृंगार और कुछ ये चीज तो कृष्ण प्रिय श्री श्रेष्ठा ये कृष्ण की आनंद किमय रस प्रतिभा ये गोपियों का स्वरूप क्या है आनंद किमय रस के द्वारा प्रतिभावित है तांभीर्य हाँ मैंने गोपियों के लिए श्रीमती राजकार नाम यहाँ बुद्ध होने पर भी उनको परमात्मा सीमा तक समझिए निज रूप को तैयार पड़ा ये कौन है कृष्ण के निज रूप गोविंद के ये रूप स्वरूप है जैसे वो सच्चिदानंदमय है ये भी सच्चिदानंद कृष्ण ही है अपनी सेवा के लिए विलास के लिए अपने आनंद के लिए दो रूपों में रूप एक गोपियों के रूप में एक अपने ही आनंद के लिए ऐसे जो अपने अपने परछाई से जैसे कहीं दिखा के खेलता है कोई व्यक्ति उसी प्रकार से अपनी शक्तियों को रूप देकर के अपने स्वरूप और उनके साथ में जो क्रीड़ा करते हैं वो लोग ये बने अपिलात्मक कृष्ण है गोलोक में रखते और उनके साथ में मित्र क्रीड़ा करते हैं ऐसे जो आदि पुरुष गोविंद है मैं महाभाव वो जो महाभाव है क्या है चिंतामणि चिंतामणि का भी सार है चिंतामणि नहीं चिंतामणि का भी सार कृष्ण बालिका पूर्ण करे एक उसका काम ही है कृष्ण की आकांक्षाओं को पूर्ण करे प्रसाद को
the first essence of that pleasure-giving potency is praying. And when praying becomes condensed, then the essence of that praying is Mahabhava. And the essence of Mahabhava, or the embodiment of Mahabhava, is Srimati Radhika herself. So these different potencies, they have their material counterparts within the material world. So the counterpart, or let's say the reflection of the pleasure-giving potency, is the potency by which we experience mundane happiness. And within the jiva, it's manifest as Brahmananda. And the sambhit potency, the perfect reflection of the sambhit potency, or the knowledge potency, is the knowledge of mundane objects. And also the word vigyan, in that sense, means like material science or knowledge of phenomena. But these potencies, these three potencies, they are manifest in Sri Krishna. Krishna is the shelter of these potencies. And these potencies act in order to facilitate Krishna's lila and in order to facilitate Krishna's enjoyment. So in particular, the Ladini potency or the pleasure-giving potency, it acts in this way to give bliss to Krishna, to enable him to taste paras, or enable him to taste different mellows of exchange with his devotees, and also to cause the devotees to taste these mellows in relationship to Krishna. So, as you're mentioning, the essence of this Ladini potency is praying. And that praying begins from Shraddha. So Gurudev was explaining that this Shraddha, or the seed of the creeper of devotion, is actually Krishna Seva Vasana. It is the desire which is planted in the heart of the devotee by his spiritual master to serve Krishna, to serve out of Krishna in a particular way. And that is manifest externally as Shraddha. And it develops through all the stages, gradually coming to the stage of bhava and praying, and then from praying it continues to develop through snaha, mana, pranaya, etc. So, Srimati Radhika's form is the embodiment of this praying, the embodiment of the highest development of praying, Mahabhava. And so her body itself is a manifestation of praying. Her body is constituted of praying. It is not made of anything else. And there's a description which is beginning here to give us some idea, some indication of how Srimati Radhika's form is composed of praying. So beginning with describing how Srimati Radhika takes three different baths at different times of the day. So the first bath is at the stage of the juncture between the Oganda and Kishoravastha. When her mood of attraction to Krishna in the conjugal mellow is becoming manifest externally. That's the first bath. Then at midday she takes another bath. And this is in the beginning or middle stage of youth. And then when she comes to the full blooming stage of youth, Kishoravastha, that is the evening bath. So this is just to give us some idea ecstatic manifestations in the body of Srimati Radhika that are expressions of her love for Krishna. That when she is experiencing love for Krishna, she exhibits different symptoms in her body, which express this love, which may be like her sidelong glasses, her bending the neck of the body in a certain way that indicates her attraction towards Krishna and her desire to meet with him. So all these various bodily symptoms are expressions of rain. And as it is said in Brahma Samhita, this verse, another Chitma Yasa, will be Bhagavad. This verse is quoted here in Chaitanya Charitamrita to explain that the forms of the gopis, they are constituted of this Ananda Chinmaya Ras. Therefore, this word Pratibhavit is used here. It means that just as Krishna's form is composed of Satchitananda, and his form is composed of this Ananda Chinmaya Ras, means this Ras, which is of the nature of prema and bliss. So similarly, the gopis' forms are composed of Satchitananda. They are like reflections of Krishna's own form. And Krishna, in the Loka, he has manifested these forms of the gopis just to enjoy with himself, just to enjoy lila, different varieties of lila.
और हम लोग जाने वाले थे अभी जमुना में बहुत जोर से बाढ़ आई अभी दो दिन आगे एक नौका उलट गई और उसमें मकान लोगों की आशंका मकान के स्थान पर जाकर कैसे हो गई और भी कुछ एक्सीडेंट हो रहे उसमें ने बताया कि आपने पीछे हम ऐसा जोखिम लेना हम लोग भी नहीं चाहते इसलिए पीछे हम लोग जा करके देखेंगे अभी हम लोग उसके पद में राधा दामोदर जी जाएंगे उनको प्रणाम करेंगे उनकी परिक्रमा में और सब कुछ हमें वहां से लौटेंगे किंतु आज नहीं कल की बात या और कोई दूसरा प्रोग्राम बात करेंगे तो यहाँ वृंदावन का वैसे हमारी परिक्रमा पूर्ण रूप से संपन्न हो गई है कुछ बाकी नहीं रहते बाकी है तो हरी कथा की ही बाकी है आप लोग खूब प्रीति के साथ में हरी कथा सुनिए और उसको धारण करेंगे बाकी और प्रोग्राम विमांचक किशोर कुमार और एंजेल बंद तो एक दर्शन और कक्षे देवी पढ़ते हो All I'm suggesting that we respect that process. Because it's been an accident. Just before yesterday, there was an accident. So I don't want to take any risk of it. So you really go to Radha Damodar, and if you can go to Radha Damodar and say, no harm. Tomorrow, after our class, we will go to Radha Damodar. Today, our father, Abhijani,